we are looking forward to the arrival of Huzoor Mufti Ashi Hussain Sahib Qibla. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulamae Ahle Sunnat. Inshallah, I will pass the mic over to Huzoor Mufti Ashi Hussain Sahib Qibla. Inshallah, he will lecture in 25 minutes. We can also join us. And at 25 talks, inshallah, he will stop the bayan for those individuals who need to perform their sunnah. And at half past, inshallah, he will bless the Mubar Sharif and the Imam will happen for Jumu'ah will be made, inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الَّذِينَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وسلم عليه. حضرات گرامی, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. بعض مفسرین کہ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرے گا وہی اصل میں اس کی عبادت کرے گا. اس کی تائید یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی اس کی تائید ایک حدیث قدسی سے ہوتی ہے. حدیث قدسی اسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ کہ اس میں بے شمار ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. قدرت عظیمہ کہ جس سے بڑھ کر قدرت ہو ہی نہیں سکتی, ऐसे इल्म का खजाना कि जिससे बढ़कर किसी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, ऐसी रहमत का खजाना कि जिससे बढ़कर तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ऐसे करम का खजाना कि जिससे ऊपर सोचा ही नहीं जा सकता, बहुत सारे सिफात अहादीस करीमा में कुरान पाक में वारिद हुए हैं, उन तमाम चीजों का खजाना अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है कुंतु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फअहबबतु अन उरफा, तो मैंने चाहा, मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरे उन खजानों का जहूर हो जाए, तो फखलकतुल खलका, तो मैंने मखलूक को पैदा किया, मखलूक को पैदा फरमा करके उस मखलूक के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने खजाने में उन तमाम सिफतों का जहूर उनके जरिए फरमाया, अपनी कुदरत का मजहर बनाया, अपने इल्म का मजहर बनाया, अपने करम का मजहर बनाया, अपनी रहमत का मजहर बनाया, अपनी तमाम सिफात का मजहर बनाया। अब उन सिफात को उनका जलवा हम मखलूक में पाते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कितनी कामिल होगी। हम मखलूक के अंदर उसके वदियत फरमाए हुए उस इल्म को देखते हैं तो हमें उसके उस बे इंतहा इल्म का पता चलता है। हम मखलूक में एक दूसरे पर रहमत करते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितनी बे इंतहा रहमत उसके खजाने में है। और मखलूक में भी फिर दरजात हैं, किसी के अंदर कमी कम, किसी के अंदर दरमियानी, किसी के अंदर कामिल तौर पर। अल्लाह तबारक व ताला के खजाने की उन चीजों का, उन सिफात का जहूर हो जाता है। और मखलूक में मजहर आतम, मजहर कामिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है, इस तौर पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो सरकार का जहूर हुआ, और इस तौर पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर पैदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत कराई, पहचान कराई, इस हिसाब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व ताला की सिफात का जहूर हुआ। सरकार आला अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं तुमसे खुदा का जहूर, उससे तुम्हारा जहूर, तुमसे खुदा का जहूर, उससे तुम्हारा जहूर, लिम है वो ये इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। लिम और इन, यह दो चीजें हैं, और मंतिक में लिम इल्लत को कहते हैं, वजह को कहते हैं, एक चीज की वजह से दूसरी चीज के बारे में इल्म हो जाए। जिस तरीके से आग और धुआं है, सिर्फ बिला तशबीह समझने के लिए, आग और धुआं है, अगर आग पाई जाए तो आग ही की वजह से धुआं पाया जाता है, अगर आग मौजूद ना हो तो धुआं बिल्कुल ही मौजूद नहीं हो सकता। तो आग धुएं के पाए जाने का, आग धुएं के वजूद का सबब है, यह लिम हो गया, दलीले लिम्मी इसको कहते हैं, इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल करना। और अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो दूर से उस धुएं को देख करके आदमी यह कहेगा कि वहां पर आग जरूर मौजूद होगी, क्योंकि धुआं बगैर आग के नहीं उठ सकता। तो धुएं को देख करके आग पर इस्तिदलाल करना कि धुआं है तो वहां आग जरूर पाई जाएगी, ये दलील इन्नी कहलाता है, मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल करना, मालूल को देख करके इल्लत का अंदाजा लगाना कि जब ये मालूल पाया जा रहा है तो इल्लत भी जरूर पाई जा रही है। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं तुमसे खुदा का जहूर, उससे तुम्हारा जहूर, तुमसे खुदा का जहूर कि तुमने अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत मखलूक में फरमाई, तुम्हारे जरिए मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत फैल गई, लोगों को हासिल हुई, तो तुमसे खुदा का जहूर हुआ। तुम नहीं आए थे तो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानते नहीं थे, कोई पत्थर को उठा करके अल्लाह समझने लगा था, कोई पेड़ों को उठा करके उनकी इबादत करने लगा था, कोई आग को पूछता था, कोई किसी और चीज को पूछता था, वो सब मखलूक ही में भटक रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान किसी को नहीं थी, खालिक की पहचान नहीं थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बताया कि ये बुत जिनको तुम पूजते हो ये वो नहीं है, क्योंकि ये तो बेबस हैं, ये दरख्त, ये आग, ये सूरज, ये चांद, ये वो नहीं है, बल्कि ये उसकी कुदरत कामिला के मजहर हैं, ये उसकी निशानियां हैं, इन्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि इनके सामने झुकना है, बल्कि इन्हें इसलिए पैदा किया गया कि इनके जरिए उसकी मारिफत हासिल करनी है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की मारिफत बताई, तो आला हज़रत फरमाते हैं तुमसे खुदा का ज़ुहूर, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत लोगों में आई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, और उससे तुम्हारा ज़ुहूर कि उसने तुम्हें पैदा फरमाया, उसने तुम्हें जाहिर फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व ताला लिम, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना होता तो कुछ भी ना होता, कोई चीज वजूद में नहीं आती, तो अल्लाह तबारक व ताला का वजूद है और उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और फिर सरकार इन हो गए, दलील इन्नी, कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत हासिल हो जाती है। तुमसे खुदा का जहूर, उससे तुम्हारा जहूर, लिम है वो, ये इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक को अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया कि वो उसको पहचाने, क्योंकि जब तक उसको नहीं पहचानेंगे तब तक उसके सामने झुकेंगे नहीं, तब तक उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक उसकी ताजीम नहीं करेंगे जब तक उसकी मारिफत नहीं होगी। बिला तशबीह अगर मैं ये कहूं कि कोई बुजुर्ग हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातहुम अलालिया, हुजूर कायदे मिल्लत दामत बरकातहुम अलालिया किसी इलाके से गुजर रहे हैं, वहां वाले उनको बिल्कुल नहीं जानते पहचानते, उन्हें पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी शख्सियतें हैं, तो बैठे हुए हैं टांग पर टांग रखे हुए बैठे हुए हैं, हुजूर गुजर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न खड़े हो रहे हैं न सलाम न कुछ भी नहीं, उनकी नजर में एक आम आदमी गुजर रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको मारिफत नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है, इल्म के खजाने हैं, बुजुर्गी के खजाने हैं। अगर उन्हें उनके बारे में पता चले तो वो बिल्कुल ताजीम भी करेंगे, मोहब्बत करेंगे, खुद ब खुद उनका सर उनकी तरफ मायल हो जाएगा, झुक जाएगा। जिस तरीके से हम सब मोहब्बत करते हैं, ताजीम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी बड़ी शख्सियतें हैं, ये कितने बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रबीन हैं। तो जब तक किसी चीज के बारे में मारिफत नहीं होती तब तक आदमी उसकी तरफ मायल नहीं होता। इसी तरह जब तक किसी चीज के बारे में इल्मियत नहीं होगी तब तक उस चीज की तरफ आदमी मायल नहीं होगा। तो जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मारिफत नहीं होगी उसके सामने आदमी कैसे झुकेगा, उसके सामने आदमी उसकी तारीफ कैसे करेगा, उसका शुक्र कैसे करेगा, जब तक उसको इस बात का यकीन ना हो कि ये जो कुछ हमें नियामतें मिल रही हैं ये उसी के पास से मिल रही हैं, इस बात का जब तक उसको यकीन ना हो तब तक वो उसका शुक्र कैसे करेगा। जब मुझे पता चलेगा कि फलाने मुझे ये चीज भेजी है तोहफतन हदियतन तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जब मुझे मालूम नहीं है कि ये किसने भेजी है तो मैं किसका शुक्र अदा करूं, किसको मैं शुक्रिया कहूं। तो इसलिए जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में उसकी कुदरत कामिला के बारे में यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा कादिर है ऐसा कदीर है कि उससे बढ़कर किसी के पास कुदरत नहीं, जब तक उसके इल्म के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा कि वो ऐसा अलीम व खबीर है कि उससे बढ़कर कोई अलीम व खबीर नहीं, जब तक कि उसके रहमत के बारे में मुझे पता ना चले कि वो इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि उससे बढ़कर कोई रहमान नहीं कोई रहीम नहीं, जब तक कि उसके बारे में मुझे ये ना पता चले कि वो बहुत बड़ा मुनइम है इनाम फरमाता है, कैसा बड़ा कि उससे बढ़कर के कोई इनाम फरमाने वाला नहीं, जब तक कि मैं ये यकीन ना करूं ये ना जानूं कि वो इतना बड़ा कहार है कि उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता, जब तक मैं उसके बारे में ये ना जानूं कि वो कोई भी चीज अता फरमा सकता है, उसके पास और बेशुमार बे इंतहा बेहद अता फरमा सकता है, क्योंकि उसके पास हर चीज के खजाने मौजूद हैं, उसके खजाने में खर्च करने से किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, समंदर में एक कतरा कम होने से तो कमी आ सकती है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में कितना भी दरिया बहे तब भी उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। जब तक कि मैं उसके बारे में यकीन ना करूं ये ना जानूं कि अगर वो अजाब देने पर आए तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, इसी तरह जब बाकी चीजों के बारे में जब तक मैं जानू नहीं तो तब तक मैं उसको मानू कैसे। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज जो इंसानों पर फर्ज है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत है, क्योंकि जब मारिफत हासिल होगी तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाएगा। अब जो कुछ नहीं जानता है वो जब कहेगा कि आमंतु बिल्ला में अल्लाह पर ईमान लाया तो उसका ये कौल उसका ये कलाम कितनी हकीकत रखता होगा वो उसके इल्म के हिसाब से ही हो।
अगर उसको बिल्कुल इल्म नहीं है तो बस उसके इस कॉल पर उससे मुआवजा तो नहीं होगा, लेकिन उसके उस कॉल की वो अहमियत नहीं होगी जो उस शख्स के कॉल की अहमियत होगी जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मारिफत हासिल की थी। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आमंतु बिल्लाह में जो अहमियत होगी, सहाबे किराम के आमंतु बिल्लाह कहने में जो अहमियत है, औलियाए कामिलीन के आमंतु बिल्लाह कहने में जो अहमियत है, वो आम आदमी के आमंतु बिल्लाह कहने में नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत मारिफत हासिल है और इधर उसी हिसाब से उतनी कम मारिफत हासिल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफ रखता हूं। वो क्यों? इसलिए कि मैं तुम में सबसे ज्यादा इज्जत का इल्म रखता हूं, उसकी मारिफत रखता हूं। अब इंसानों की मारिफत में और दूसरी मखलूकात की मारिफत में फर्क है। फरिश्ते जो इंसानों से पहले अशरफुल मखलूकात थे, उनकी मारिफत सिर्फ उतनी है जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाई। खुद उनका इकरार था जब उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम बताओ नाम, तो उन्होंने कहा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। तो उन्हें जितनी बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई हैं उतनी ही बातें उनको पता है, और दूसरा उनमें कुछ उस दर्जे पर फायज है कि लौहे महफूज से भी वो बातें मालूम कर लेते हैं। लौहे महफूज पर भी उनकी निगाह रहती है, वो वहां पर भी पढ़ लेते हैं, तो उन्हें उस तरीके से भी कुछ मारिफत हासिल होती है। लेकिन इंसान की मारिफत अलग तरीके की है। इसीलिए बाज उलमाए किराम, बाज हुकमा इस बात को मना ही करते हैं कि फरिश्तों के किसी इल्म में या कमाल में इजाफा नहीं हो सकता अपनी, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जितनी बातें बताए उस तरीके से तो इजाफा हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से वो चाहें तो उनके इल्म में उनकी मारिफत में इजाफा नहीं हो सकता। इसके बरक्स इंसानों की मारिफत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में होएगी, वो मारिफत कहीं जाकर के नहीं रुक सकती, क्योंकि इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो कुरान पाक अता फरमाया, हमारी उम्मत को हमारी उम्मत से पहले भी किताबें नाजिल फरमाई, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, और दूसरा इस जमीन पर आबाद फरमाया। इस जमीन में बे इंतहा चीजें वदियत फरमाई, यहां तक कि कुरान पाक में है कि चार दिन में जमीन और जमीन के अंदर की चीजों को पैदा फरमाया, तो कितना कुछ वदियत फरमाया होगा कि जब से इंसान पैदा हुआ है 7,000 साल से, 8,000 साल से वो जमीन के अंदर की चीजों की खोज लगा रहा है, लेकिन अब तक दावा नहीं कर सकता कोई कि अब जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबका हमने पता लगा लिया है। जमीन के ऊपर ये जो हवा का गिलाफ है इसमें जो चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं सबका हमने पता लगा लिया, पानी के अंदर जो चीजें हैं सबका हमने पता लगा लिया है, ऐसा दावा नहीं कर सकता। हालांकि 8 साल से जमीन, लेकिन नहीं कर सकता दावा। कुरान पाक भी ऐसा समंदर है कि जिसकी गहराई नहीं है, उसकी गहराई लग सकता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने उलूम रखे हैं कि उन उलूम को भी कोई पा नहीं सकता है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नाजिल फरमाई। इसी तरीके से कुरान पाक नाजिल फरमा करके उसकी आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौर करने का हमें हुक्म दिया, यानी दो चीजें हमें ऐसी अता फरमाई कि वो फरिश्तों में नहीं थी, उनको अफलाता तदब्बरून अफलाता तफक्करून ये सब इरशाद नहीं हुआ कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं,
یہ سب انسانوں سے ارشاد ہوا کہ تم آیتوں میں غور کرو. آیتوں سے دونوں آیتیں مراد ہیں, قرآن پاک کی آیتیں بھی مراد ہیں, وہ بھی آیتیں ہیں, ان میں بھی غور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا, اور ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے سرکار کے وسیلے سے غور کرنا جو شروع ہوا. تو کتنے علوم جن کا قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے وجود ہی نہیں تھا, لیکن قرآن پاک نازل ہونے کے بعد سے ایک علم سامنے آ رہے ہیں. یہ سائنس, یہ سب چیزیں قرآن پاک ہی کے دامن سے پیدا ہوئی ہیں. اس سے پہلے نہ سائنس کا وجود تھا, نہ جغرافیہ کا وجود تھا, نہ فزکس کا وجود تھا, نہ کیمسٹری کا وجود تھا, نہ سائیکالوجی کا وجود تھا, کسی بھی علم کا وجود نہیں تھا. علوم دینیہ تو اسی سے حاصل ہوئے ہیں. تو علوم دینیہ ہو یا علوم دنیاویہ ہو, ان میں سے کسی بھی علم کا وجود قرآن پاک سے پہلے نہیں تھا اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد وہ وجود میں آتے گئے, اور ایک سے ایک علم, اور سب قرآن پاک کے دامن سے پناہ جو ہے نکلے ہیں. تو قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے غور کرنے کا حکم فرمایا, تو آدمی جتنا قرآن پاک کی آیتوں میں غور کرتا رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی. اور اسی طریقے سے جتنا آدمی آس پاس میں گھوم کر کے آس پاس کی چیزوں میں جس کو اللہ رب العزت نے آیتیں فرمایا, یہ پیڑ, یہ پودے, یہ سمندر, یہ جانور, چرند, پرند, سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے آیتیں فرمایا, کہ آسمان, زمین, عرش عظیم, دن رات کا اختلاف, آنا جانا, پھر دن رات کا چھوٹا ہونا, بڑا ہونا, پھر دن رات کا چمکدار ہونا, تاریک ہونا, پھر اس طریقے سے سمندر میں کشتیوں کا چلنا, یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں, اس میں آیتیں ہیں. تو اب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی معرفت کی طرف بلایا, اپنی بارگاہ کی طرف بلایا, اور ہمیں بلانے کے لیے راستے میں جگہ جگہ نشانات لگا دیے. جس طریقے سے کسی جگہ جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے, اب اس میں وہ مائل سٹون لگے ہوئے ہیں, بورڈ لگے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے, ایک نشان آتا ہے, دوسرا نشان آتا ہے, تو جس راستے کے جتنے نشان آتے جائیں گے وہ راستہ اتنا ہی طے کرنے میں آسان ہوتا ہے, اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ قرآن پاک کی آیتیں, یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں, اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. یہ دنیا میں پھیلی ہوئی آیتیں, یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو ان نشانیوں کو پڑھے گا اور ان میں غور کرے گا تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا. اور میں نے بتایا کہ فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے انہیں بتایا, وہ اپنی طرف سے غور نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے تعامل نہیں کر سکتے ہیں, انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم زمین میں سیرو فی الارض, زمین میں گھومو پھرو. قرآن پاک میں تو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہی, آس پاس کی چیزوں میں زمین میں گھومنے پھرنے کا حکم دیا گیا کہ اس میں جگہ جگہ میں نے اپنی معرفت کی نشانیاں رکھی ہے, ان نشانیوں کو دیکھو اور ان میں غور کرو. تو جو جس قدر نشانیوں کو دیکھتا جائے گا, جو جس قدر آیت کریمہ کی تلاوت کرتا جائے گا, اس کے معنی میں غور کرتا جائے گا, اس کو اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو کچھ معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں, دوسری مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں, تیسری مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں, چوتھی مرتبہ, یعنی بار بار پڑھنے سے ہر مرتبہ ہمیں قرآن پاک سے نئی چیز معلوم ہو جاتی ہے, ہر مرتبہ پڑھنے سے نئے نئے نقطے معلوم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس دنیا کی نشانیوں میں بھی جتنا غور و فکر کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ ہماری معرفت ہو جائے گی.
और जितनी ज्यादा फिर मारिफत हो जाएगी उतना ही ज्यादा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकेंगे और उतना ही ज्यादा फिर हम अच्छे तरीके से उसकी इबादत करेंगे। मारिफत को वो सारी चीजें लाजिम है। लियाबुदून से मुराद अगर इबादत लें तो सिर्फ इबादत ही सादिक आ जाएगी, लेकिन लियाबुदून से अगर उन मुराद लेंगे तो बाकी सारी चीजें उसके लिए लाजिम है, बाकी सारी चीजें उसके बाद खुद ब खुद पाई जाएंगी। लियारिफून, ताकि वो मुझे पहचाने, जब पहचानेंगे मेरे बारे में इल्म हासिल करेंगे तो उसके बाद फिर वो मेरी इबादत भी करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे भी, और कुछ मांगना होगा तो मुझसे ही मांगेंगे, किसी बड़े दुश्मन के सामने मुकाबला होगा तो मेरी ही पनाह लेंगे जिसके उनके अंदर ताकत ना हो, क्योंकि वो मेरे बारे में जान चुके होंगे कि मुझसे बढ़कर के किसी के पास ताकत नहीं, जिसके पास है भी वो मेरी दी हुई है तो वो जरूर मेरी ही पनाह लेंगे। इस तरीके से आदमी जितना ज्यादा इन कुरान पाक की आयतों में, अहादीस करीमा में और आसपास फैली हुई निशानियों में गौर करता जाएगा, उसकी मारिफत उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। फरिश्ते बेशक उनकी इबादत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब से हमसे भी बरसा बरस पहले वो पैदा होकर के, कोई क्याम में है तो कोई सुजूद में है, वो तब से अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी कर रहे हैं। लेकिन इंसान अगर जिसकी इबादत मुख्तसर है 60 साल की 70 साल की, लेकिन ये अगर आयतों में गौर करेगा तो इसकी मारिफत वो फरिश्तों से कहीं ज्यादा हो जाएगी, और उसी मारिफत ही की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को इस इंसान के सामने सजदा करने का हुक्म दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उसके बाद फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सामने, उनके सामने झुकने को कहा कि तुम आदम को सजदा करो। वो यही मारिफत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए पैदा किया ताकि उसकी मारिफत हासिल हो जाए, उसको पहचाना जाए। तो जिसको जितनी ज्यादा मारिफत हासिल होगी उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उतना ही ज्यादा कुर्ब हासिल होगा, उतना ही बड़ा मर्तबा हासिल होगा। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हमारा जो ईमान होगा वह ईमान बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, कि जो फिर किसी के साथ, किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शरीक करने को सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जब वो देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत इतनी कामिल, उसका इल्म इतना वसी, उसकी सिफात का इतना कमाल, तो वो फिर पेड़ को उसके साथ कैसे शरीक कर सकता है, वो फिर पत्थर को उसके साथ कैसे शरीक कर सकता है कि जैसे उसके सामने झुके वैसे पत्थर के सामने झुके, उसका दिल कभी उस बात को गवारा नहीं करेगा। इसलिए जब थोड़ा सा भी अकल वो लगा देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक करने का कभी सोचेगा भी नहीं। ये सब मारिफत की वजह से होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत जब उसको हासिल हो जाएगी। وصلى الله تعالى على سيد خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mufti Ashraf Raza Kha, Hafizahullah Ta'ala. We are mahroom from the visit of Huzur Qaid Millat. He has not come. He was planning on coming, but he is not well and not fit to travel, and therefore he has not come, but he has sent his most trusted individual, Huzur Mufti Ashraf Hussain Sahib, who we just heard now. He awakened our souls with regards to the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala, some of the pearls from the ilm, the knowledge of the awliya ikram, he just shared with us how to acquire the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and how the awliya ikram, they see the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala in everything around them. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that tawfiq to acquire that ma'rifah, and then the the joy that we find in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is completely different when you have the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. And the more ma'rifah you have, the more you enjoy the worship. Just to mention that tonight, Huzur Mufti Ashraf Hussain Sahib Qibla will be in Blackburn at 7:30 at the Sunni Way center in Blackburn, and tomorrow Huzoor will be in Nurani Masjid after Isha Salah, the Nurani Masjid, just over there, and Lytham Road. And inshallah, on Sunday he will be in Blackburn Masjid Ghawthia, and then from Monday to Friday, each day he will be here giving the dars on the Qasida Burda Sharif of Imam Busiri radiallahu ta'ala. So every day from 7:30 till 8:30, for 1 hour, he will inshallah be sitting here in this hall, either on that side or this side, and women and men will both be facilitated to be here. The parda will be in the middle. We will inshallah try and have two screens on each side, and ask Mufti Nisar Sahib if he is available to type as Hazrat speaks, so that you can see the English translation on both sides, and inshallah learn the meanings and understandings of the Qasida Burda Sharif. And the next weekend, on Saturday, he will be in Luton, and Sunday, I think maybe Leicester, maybe Nottingham, that will be confirmed later on. Jazakumullah khaira. The azan will, before the azan happens, anyone who needs to perform the sunnah can perform the sunnah, and after about 4 minutes, the azan will happen. Jazakumullah khaira.